राजयोग अपने आप में एक संपूर्ण योग है। इसे राजयोग कहते ही इस अर्थ में है कि ये सर्व योगों का राजा है, क्योंकि इस योग का आदि शिक्षक स्वयं परमात्मा है। क्योंकि इस योग का आधार आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान है और आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान स्वयं परमात्मा ही देते हैं। इसलिए जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तब ही राजयोग संभव है। और इस योग अभ्यास से हम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बन सकते हैं। कर्मेंद्रिय जीत जितेंद्रिय बन सकते हैं। इससे हमें संसार के आदि मध्य अंत के राज स्पष्ट होते हैं और इस अभ्यास से इस योग अभ्यास से हमारे में रॉयल दैवी मैनर्स आने लगते हैं। इसलिए इसे राजयोग कहते हैं। ये ज्ञान योग है क्योंकि इसमें ज्ञान पूर्वक समझ पूर्वक अभ्यास हम करते सिर्फ भावना से श्रद्धा से याद करने की बात नहीं है, लेकिन पहले हमें समझना है कि श्रद्धा और भावना भी किसके प्रति रखना है। तो ज्ञान पूर्वक समझ पूर्वक विवेक पूर्वक हम इसका अभ्यास करते हैं। इस योग का आधार ही ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए इसको ज्ञान योग भी कहते हैं। ज्ञान जब समझते हैं तो बुद्धि का परिवर्तन होता है, बुद्धि दिव्य बनती है। और इस योग का अभ्यास भी बुद्धि से करते हैं, कोई क्रिया या साधन से नहीं करते हैं, बुद्धि बल से करते हैं, बुद्धि पूर्वक करते हैं। इसलिए इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। और जब बुद्धि परिवर्तन होती है, बुद्धि डिविनाइज होती है, तो ऑटोमेटिक हमारे कर्म में भी परिवर्तन होता है, कर्म श्रेष्ठ बनते हैं, कर्म करने की कुशलता प्राप्त होती है। कर्म करते करते भी हम योग अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए इसको कर्मयोग भी कहते हैं। ये संन्यास योग भी है क्योंकि इसमें आंतरिक संन्यास है, कोई बाह्य रूप से घर बार छोड़ने की, जिम्मेवारियां छोड़ने की बात नहीं है, कोई भगवा पहनना या सफेद पहनना वो संन्यास की बात नहीं है, लेकिन हम अपने मनोविकारों का त्याग करते, इस दुनिया में रहते हुए भी न्यारे रहते हैं, मन से उपराम रहते हैं, तो इस अर्थ में ये संन्यास योग भी है। ये समत्व योग है, हमारी पर्सनालिटी में बैलेंस आता है, आत्मा में वो शक्ति आती है, योग अभ्यास से हमारी प्रज्ञा, हमारा विजडम स्थिर रहता है, जिसके कारण सुख दुख मान अपमान जय पराजय जीवन की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उसमें हम अपनी स्वस्थता रख सकते हैं, इसलिए इसको समत्व योग कहते हैं। तो इस प्रकार राजयोग में सभी योग समाये हुए हैं और ये है ही प्रवृत्ति मार्ग का योग। हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपने जीवन को पवित्र योगी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन विषय भोग के लिए है, नहीं, योग के लिए है। हम प्रवृत्ति में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र न्यारू और प्यारा योगी जीवन बना सकते हैं, और इसके लिए आवश्यक है कि हम योग को कर्म में समाएं, अपने जीवन में उनका समावेश करें। सिर्फ हमने नियम से आधा घंटा घंटा अभ्यास कर लिया और बाकी के 22 घंटे हमें अटेंशन भी न रहे, मैं आत्मा हूं ये स्मृति भी न रहे, परमात्मा की संतान हूं ये स्वमान भी न रहे, तो कर्म अलग हो गया, योग अलग हो गया। यही कारण है कि भक्ति में हम भगवान को याद करते हैं, लोग नियम से अपना पूजा पाठ भजन कीर्तन शास्त्र पठन देव दर्शन कथा श्रवण अपना नियम से घंटा एक घंटा रोज कर लेते हैं, लेकिन बाकी के 22-23 घंटे हमें अटेंशन नहीं रहता है कि धर्म हमें क्या सिखाता है, ज्ञान हमें क्या कहता है। हम कह सकते हैं कि एक घंटे का धर्म करके बाकी के 22 घंटे अधर्म करने की परमिट जैसे हम ले लेते, तो वहां सिर्फ हमारी भावना संतुष्ट होती, कर्म श्रेष्ठ नहीं बनता है। इसलिए राजयोग को कर्म में हमें समाना है, उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या को अब रिसेट करें। देरी से सोते हैं, देरी से उठते हैं, इसके बजाय हम लक्ष्य रखें कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। हमारे बुजुर्ग वाइज लोग भी कहते रहे हैं, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, दिस इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। देर रात तक हम टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, अखबार पुस्तकें पढ़ते हैं या तेरी मेरी बातें करते हैं और फिर देर रात को सो जाते हैं और फिर सुबह देरी से उठते हैं। लेकिन अब आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या को बदले, रात को जल्दी सो जाए। हम भी यहां 10:30 बजे सोते हैं। अगर 10:30 भी आप सो जाते हैं तो सुबह आराम से आप 3:30-4 बजे उठ सकते। अगर सोने की विधि ठीक करेंगे तो उठने की विधि ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। जैसे रात को हम सारे दिन का हिसाब करते हैं, विशेषकर व्यापारी लोगों को अभ्यास है कि सारा दिन क्या हमने कमाया, क्या खर्च हुआ, क्या बैलेंस रहा, हम ये हिसाब निकालते हैं, पोतामेल लिखते हैं। इस प्रकार सारा दिन मन वचन कर्म से जो कुछ हम करते हैं उसका हिसाब मन ही मन देखें और उस पिता परमात्मा को बताएं। जो कुछ गलत किया है वो फिर से न करने की दृढ़ता करें और परमात्मा की याद में, उसके ही याद और प्यार में अगर हम सो जाते हैं तो सुबह आराम से हम जल्दी उठ सकते हैं। जैसे रात को हाथ पांव धोकर और बिस्तर ठीक करके सो जाते हैं, ऐसे मन को भी ठीक करके सो जाए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नियम है कि जिन विचारों को लेकर आप सोएंगे उन्हीं विचारों के साथ उठेंगे। सुबह उठते ही मन वही बात से फिर लिंक हो जाएगा। इसलिए आज के दिन जो कुछ हुआ रात को उसको विजुअलाइज करके, ठीक करके, मन ही मन उस पिता को अपना चार्ट बताकर, फिर उसकी याद में श्रेष्ठ चिंतन में शांति से सो जाए। आप अनुभव करेंगे कि आपको बिल्कुल सात्विक निंद्रा आएगी, कोई खराब स्वप्न नहीं आएंगे, कम समय में भी पूर्ण आराम का अनुभव होगा। सुबह उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे और उठते ही परमात्मा की याद आएगी। सुबह उठकर मन की आंख से उस कल्याणकारी पिता परमात्मा को देखें, उनसे मधुर मिलन मनाएं, उनको गुड मॉर्निंग करें। जैसे सुबह उठकर एक दो को गुड मॉर्निंग करते हैं, आप सुबह उठकर सबसे पहले मन ही मन उस पिता को गुड मॉर्निंग करें, उनको देखें, उनकी याद से दिनचर्या शुरू करें। ये नहीं उठते ही चाय याद आवे, उठते ही अखबार याद आवे, उठते ही कामकाजी याद आवे, नहीं, 2 मिनट 3 मिनट बिस्तर में बैठकर उस पिता से बात करें, गुड मॉर्निंग करें। तो जिन विचारों से दिनचर्या शुरू करेंगे, लौकिक में भी आप मानते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले जिसका मुंह देखते हैं ऐसा दिन जाता है, लोग ऐसा मानते हैं। कुछ गड़बड़ होगी तो हम कहेंगे कि भाई किसका मुंह देखकर निकले थे, हम दूसरों को दोषित करते हैं, लेकिन हम अपनी दिनचर्या उस कल्याणकारी पिता परमात्मा की याद से करें, मन की आंख से उनको देखें, ऑटोमेटिक सारा दिन बिगर मेहनत बार बार स्वतः परमात्मा की याद आएगी, क्योंकि दिनचर्या की शुरुआत मॉर्निंग से है। जैसे आप एक वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए पत्ते पत्ते को पानी नहीं पिलाते हैं, उनकी जड़ों को सींचते हैं, जड़ों को पानी देते हैं, ऑटोमेटिक सारे वृक्ष को पहुंच जाता है। ऐसे अर्ली मॉर्निंग हमारी मेमोरीज फ्रेश होती है। उस समय अगर परमात्मा की याद का अभ्यास करते हैं तो वो एब्सॉर्ब हो जाती है और सारा दिन ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आती है। जैसे जल्दी सुबह फोन कॉल बुक करते हैं तो जल्दी नंबर मिल जाता है, क्योंकि उस समय लाइन क्लियर होती है। हमारी भी मन बुद्धि की लाइन सुबह क्लियर होती है, दिनचर्या शुरू हो जाती, प्रवृत्ति शुरू हो जाती, फिर बातें छपना शुरू हो जाती। अर्ली मॉर्निंग मन बुद्धि क्लियर होते हैं, फ्रेश होते हैं। इसलिए सुबह 4 बजे का समय अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। योग के लिए वो सर्वोत्तम समय है। उस समय हम आराम करके उठते हैं, तन और मन फ्रेश होता है, वातावरण शांत होता है। उस समय खुद को देहभान से अलग आत्मभान में स्थित करना, उस एक पिता को याद करना बहुत सहज है। केवल उनकी याद में हम रह सकते और वो अमृत वेले का अभ्यास सारा दिन ऑटोमेटिक बार बार परमात्मा की याद दिलाता रहे। इसलिए हम इस विश्वविद्यालय में कहते हैं कि अमृत वेला 4 बजे से सुबह 8 बजे तक का समय हम ये समझें कि वो सेल्फ एम्पावरमेंट का समय, स्व उन्नति का समय है। उस समय भल जो आवश्यक है वो कार्य ड्यूटीज हम करें, हम भी करते हैं, या जिसकी जो ड्यूटी है सुबह सुबह वो करते हैं हम भी, सब्जी काटते हैं, नाश्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं, लोग आते हैं, एकोमोडेशन देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, जो आवश्यक ड्यूटी है वो करना ही है। कर्म योग को डिस्टर्ब नहीं करता है, ये हमारे अपनी अवेयरनेस पर है कि कर्म करते भी मेरा अपना अटेंशन कहां है। लेकिन लक्ष्य रखें कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का समय साइलेंस में रहने का समय, उस पिता की याद में रहने का समय, शांति से परमात्मा की याद में रहकर भी हम कर्म कर सकते। आपको नाश्ता बनाना है या तैयार होना है, मॉर्निंग ड्यूटी है, ट्रैवल करना है, कर सकते, पर लक्ष्य रहे कि आवाज में नहीं आना है, साइलेंस में रहकर सब कुछ करे, उस पिता की याद में करे। तो 4 से 5 योग अभ्यास करे, फिर स्नान आदि करके तैयार हो जाए, फिर आप मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें या अपना आवश्यक कार्य करें, और फिर 1 घंटा हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, परमात्मा के सत्य ज्ञान के महावाक्य सुनते हैं, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। अगर हम पहला इनपुट सत्य ज्ञान के वचनों का देते हैं तो वही आउटपुट आएगा। जिन बातों से बुद्धि को भरेंगे वही बातें बार बार चिंतन में आएंगी। सुबह उठते ही हम तेरी मेरी इधर उधर की बातें न्यूज़पेपर पढ़ते, या तो जो इनपुट पहला होगा वही बार बार चिंतन में आएगा। हम ऐसे नहीं कहते कोई 24 घंटा ज्ञान योग करते रहना है, नहीं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट इनपुट परमात्मा की याद और सत्य ज्ञान के महावाक्यों का है, तो इससे एक मन और बुद्धि पर एक सेफ्टी कवच हो जाता है। फिर सारा दिन स्वाभाविक है कि हम इस दुनिया में रहते हैं, कर्म क्षेत्र पर है, भांत भांत के लोगों से मिलना है, सुनना है, देखना है, कार्य करना है। कितनी भी नेगेटिविटी आप देखेंगे सुनेंगे, लेकिन वो आपके पर्सनालिटी को प्रभावित नहीं करे, क्योंकि हमने फर्स्ट लेयर मन बुद्धि पर ज्ञान और योग का चढ़ा दिया है। इसलिए एक निमित्त भाव से डिटैच होकर वो सब बातें आप हैंडल कर सकेंगे, लेकिन वो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। और इस प्रकार जैसे अमृत वेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संध्या का समय भी परमात्मा की याद के लिए उत्तम समय है। उस समय भी आप देखिए मेजॉरिटी लोग भक्ति भी करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वातावरण प्रभु भावना का होता है। और सारा दिन का विस्तार करके संध्या होते ही लोग इसको समेटने लगते। आपने देखा होगा पंछी भी वापस अपने घोंसले की ओर जाने लगते, गाय भैंस भी इधर उधर चारा चर के वापस मालिक के पास जाने लगते। तो हमें भी मन बुद्धि समेटने में उस समय मदद मिलती। इसलिए शाम को 6:30 से 7:30 बजे का समय, वो भी योग के लिए उत्तम समय। चाहे आप बस में हैं, दुकान में बैठे हैं या घर में हैं, उस समय भी योग अभ्यास करें। तो अगर अमृत वेला योग मॉर्निंग, ईश्वरीय महावाक्य, संध्या का योग और रात्रि सोते समय परमात्मा की याद और कर्मों का हिसाब बताना, ये 4 बात भी आप अपनी दिनचर्या में फिक्स करेंगे, आप अनुभव करके देखिए, बहुत नेचुरल योगी जीवन हमारा बनता जाएगा। और सारे दिन में जो हमारा कर्म क्षेत्र पर कार्य करने का समय है, उसमें आप लक्ष्य रखें कि बीच बीच में 1 मिनट 2 मिनट, जैसे आप नहा धो के तैयार हो जाते हैं नाश्ते से पहले, तैयार होकर ऑफिस जाते हैं, उस समय रिसेस आवर्स में, लंच टाइम, शाम को जब चाय पीते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, इस प्रकार दिनचर्या में 7-8 समय ऐसा आप फिक्स करें, जब केवल 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आप अपने को समेट लें और परमात्मा की याद का अभ्यास करें। यहां अगर आपने अटेंशन दिया हो तो हर घंटे 1 मिनट गीत बजता है, और उस समय हम लक्ष्य रखते हैं कि जहां भी हैं, जो भी कार्य करते हैं, लेकिन मन को समेट कर उस शक्ति सर्वशक्तिमान पिता को याद करें, साइलेंस में स्थित हो जाए। ये ट्रैफिक कंट्रोल हम इसको कहते हैं। जब बहुत ट्रैफिक हो जाता है तो हम रेड सिग्नल करते हैं, ट्रैफिक स्टॉप कर देते हैं, फिर उसको चैनलाइज करते हैं। तो जब हम कर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं, 1 सेकेंड रिट्रीट करें, खुद को वापस खींचे, स्व में स्थित हो जाए। तो इससे हमारे कर्म में योग का समावेश होता जाएगा, फिर हम एनर्जेटिक अटेंटिव बनते जाएंगे। इस प्रकार की दिनचर्या रखने से कितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम उठा ले, हजारों लोगों से रोज मिलते रहे, डील करते रहे, तो भी आप लाइट और इजी रह सकते हैं। सब कुछ करते भी न करने की स्थिति, कहते हैं ना, करते हुए भी अकर्ता, न्यारा और प्यारी स्थिति हम बना सकते। इसलिए सबसे पहले बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए कि हमारे कर्म, हमारी जिम्मेवारियां, हमारी प्रवृत्ति योग में विघ्न नहीं है। जीवन है माना प्रवृत्ति करनी ही है। योग वास्तव में एक अटेंशन और रिमेम्बरेंस की बात है। इसलिए आज जबकि आप सबको वापस अपने अपने कर्म क्षेत्र में जाना है, और हम सब जानते हैं भारतवासी कि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है और आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर आने के बाद, शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर नहीं रह सकते। आत्मा चैतन्य है और जैसे ही फिजिकल ऑर्गन्स मिलते हैं वो एक्टिव हो जाती है, उसका रोल इमर्ज हो जाता है, वो क्रियाशील बन जाती है। इसलिए एक क्षण भी हम कर्म किए बिगर नहीं रह सकते। कई लोग कहते हैं हम कर्म सन्यासी हैं, कर्म सन्यासी कोई भी नहीं हो सकता। व्यक्ति अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेवारियों को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, कहते हैं सन्यास ले लिया, पर जंगल में जाना, वहां जाकर भी जीवन जीना, श्वास लेना, देखना, सोचना, साधना करना, ये भी तो कर्म है। इसलिए कर्मों का संपूर्ण सन्यास कोई भी नहीं कर सकता। कर्म हमें करने ही हैं। और ये भी हम जानते हैं कर्म का सर्वसामान्य सिद्धांत कि जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे, जो करेंगे वो मिलेगा, जैसा करेंगे जितना करेंगे उतना मिलेगा। इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर ये नियम है कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। इसलिए कहा जाता है एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। आप जो देंगे वही रिबाउंड होगा। आप सुख देंगे सुख मिलेगा, रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार देंगे प्यार मिलेगा, सहयोग देंगे सहयोग मिलेगा, दुख देंगे दुख ही मिलेगा, जो देंगे वो ही पाएंगे। इसलिए कर्म के बल से ही जीवन में हम प्राप्त करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल सुख और शांति है, पाप कर्म का फल दुख और अशांति है। अगर हम अपने जीवन में दुख और अशांति के फल चख रहे हैं तो अंडरस्टूड है, जाने अनजाने हमारे द्वारा गलत कर्म के बीज बोए जा रहे हैं, तब तो दुख का फल मिल रहा है। इसलिए अगर जीवन में हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना होगा। इसलिए कर्म के बारे में जानना जरूरी है। हर कर्म रूपी बीज का अपना जर्मिनेटिव पावर है, हर कर्म रूपी बीज का अपना जर्मिनेटिव ड्यूरेशन है। जैसे उस बीज में भी है, आप टमाटर मिर्ची के बीज बोएंगे तुरंत पौधा पनप जाएगा, तुरंत फल भी मिलेगा और तुरंत खत्म भी हो जाएगा। लेकिन आप वॉलनट आम कोकोनट के बीज बोएंगे तो उसको पनपने में कुछ समय लगता है, लेकिन फिर वर्ष 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 वो फल देता ही रहता है। तो हर बीज का अपना पनपने का टाइम पीरियड है, समय अवधि है, और हर बीज की अपनी शक्ति है। सेम कर्म रूपी बीज का भी ऐसा है, कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं और हिसाब खत्म हो जाता है, कुछ कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन वो ऐसा ठोस हिसाब होता है कि वो जन्म जन्म चुकाना पड़ता है। कर्म रूपी बीज के इस राज को न समझने के कारण कई बार हम सोच लेते हैं कि देखो ये गलत करते हैं फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, बेईमानी करते हैं तो ये शाहूकार हो गए, हम ईमानदारी से चले तो जो है वैसे ही रहे। लोग दादागिरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ का आधार लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, हम सादे सीधे सरल हैं तो देखो हम वहां के वहां ही हैं। और इसलिए फिर लोग ये सोच लेते हैं कि भाई छोड़ो ईमानदारी को, सच्चाई को, सरलता को, बेईमानी करो, प्रपंच करो, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, गलत का रिजल्ट गलत ही आता है। ठीक है, तुरंत वो हिसाब नहीं भी दिखाई देगा, लेकिन गलत तरीके से आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति का अंत भी गलत ही होता है। परसों हमारा मॉर्निंग मुरली क्लास जो चला, इतने सुंदर महावाक्य थे जिसमें ये हमें बताया गया कि सत्य की अल्पकाल के लिए हार हो सकती है लेकिन सदा काल की जीत होती है, असत्य कभी विजयी होते हुए दिखाई देगा और उस समय असत्य करने वाले उसका आनंद भी मनाएंगे, लेकिन जब सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है तो वही आनंद मनाने वाले उससे भी 100 गुणा पश्चाताप उसको करना पड़ता है, क्योंकि सत्य सत्य ही रहता है, चाहे कोई भी उससे न माने इससे वो असत्य नहीं हो जाता है, सत्य सत्य ही रहता है। और असत्य भल सभी मानने लगे इससे वो सत्य नहीं हो जाता है, असत्य असत्य ही रहता है। हमें थोड़ा सा धैर्य और हिम्मत अपने आप में रखना होता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन जीवन में गलत ही धारणाएं कराता है। आपका गलत तरीके से कमाया हुआ धन, कोई एक बच्चा ही आपका ऐसा निकल जाएगा जो नाम बदनाम कर देगा, कुसंस्कारी बन जाएगा, या आपके जीवन का अंत गलत होगा। इसलिए हम गहराई से सोचे तब कहा जाता है कि भाई सोच समझ कर हर कर्म करो। सोचना मन का कार्य है, समझना बुद्धि का कार्य है, करने से संस्कार बनते हैं। मीन्स हम अपने समग्र अस्तित्व से एकाग्र होकर फिर वो कर्म करें, जल्दबाजी में अशुद्ध तरीके से, अशुद्ध साधनों से नहीं करें, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उसका हिसाब आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो अंत में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें चुकाना ही होता है। और ये संसार रूपी नाटक कर्म के सिद्धांत पर चलता है। ये एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीनरी है कि इसमें परमात्मा को भी कुछ करना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे कर्म देखता रहेगा और हिसाब बनाता रहेगा, नहीं, ये ऑटोमेटिक है इस वर्ल्ड ड्रामा में। इसलिए इसमें कोई अन्याय आगे पीछे पक्षपात नहीं हो सकता। कर्म के हिसाब कर्ता आत्मा को चुकाना ही होता है। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है समय की अवधि अभी या अंत में, इस जन्म में या अगले जन्म। इसलिए हम अपने प्रत्येक कर्म को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखें। सत कर्म की बड़ी सिंपल व्याख्या है, आत्मा अपनी सत्य स्थिति में स्थित होकर परमात्मा स्मृति में, परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर जो कर्म करती है उसे सत कर्म कहा जाता है। अभी आत्मा की झूठी तमोप्रधान स्थिति बन गई, आत्मा की सत्य स्थिति है जो उसकी ओरिजिनल पवित्र स्थिति है। और ये फर्स्ट लेसन में ही आपने समझा है कि प्रत्येक आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति में शुद्ध है, सत्य है, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति से भरी हुई वो स्थिति है। तो आत्मा की सत्य स्थिति में स्थित होकर, श्रेष्ठ स्मृति में रहकर, परमात्मा की श्रीमत पर जो कर्म हम करते हैं उसे सत्कर्म कहा जाता है। तो हम हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म बना सकते, और उसके अपोजिट आत्मविस्मृत होकर, देहभान में आकर, विकारों के वश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, आलस्य, भय, जो भी नेगेटिविटीज है जिसको विकार कहा जाता है, तो आत्मविस्मृत होकर, देहभान में आकर, विकारों के वश जो कर्म हम करते हैं उसे पाप कर्म कहा जाता है। तो हम मनुष्य आत्माओं के कर्म जब श्रेष्ठ होते हैं तो संसार स्वर्ग होता है। उस टाइम पीरियड को सतयुग कहा जाता है। जब हमारे कर्म भ्रष्ट होते हैं तो इस दुनिया को ही नर्क और उस समय एज युग को कलयुग कहा जाता है। तो संसार चक्र चलता है हम आत्माओं के कर्म के आधार से। युग बदलते हैं आत्मा की स्थिति बदलने से। जब हमारी स्थिति सत्य है, श्रेष्ठ है, शुभ है तो ये संसार स्वर्ग कहा जाता है। प्रकृति, पशु, पंछी, जगत, हम मनुष्यात्मा को फॉलो होते। जब हम पवित्र है, देवता है, तो प्रकृति पशु पंछी जगत भी सात्विक सतोप्रधान सुखदायी होते। इसलिए कहा जाता है कि राम राज्य में गाय और बाघ, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। प्रकृति भी सात्विक थी। हम ये भी गायन करते हैं कि ऋषि मुनियों की तपस्या से इतने सात्विक वाइब्रेशंस फैलते थे जो आसपास के जंगल के हिंसक प्राणी उनके आश्रम में पालतू प्राणी की तरह आकर बैठ जाते थे, उनकी हिंसक वृत्ति का शमन हो जाता था। आज हमने अपने जीवन के नियम मर्यादाओं को तोड़ा है, अपने इनर डिसिप्लिन को तोड़ा है, इसलिए बाह्य जगत पशु पंछी प्रकृति भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं। जब हमारा अपना नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो आउटसाइड नेचर भी कंट्रोल में नहीं। इसलिए पशु पंछी प्रकृति जगत को हम ठीक करना चाहते हैं, हम मनुष्यात्माओं को ठीक होने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्यात्मा को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। हमारा विवेक जितना विकसित है उतना पशु पंछी का नहीं है। इसलिए परमात्मा मनुष्यात्माओं को पावन बनाते हैं। मनुष्यात्माएं पावन बनती है तो क्रमशः ऑटोमेटिक पशु पंछी प्रकृति भी पावन बन जाते। तो ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर है और नरक पाताल में है, देवताएं आकाश में रहते हैं, असुर पाताल में रहते हैं। लोग सोचते हैं कि हम इस मृत्यु लोक के मानवी हैं। नहीं, स्वर्ग कोई आकाश में नहीं है, नर्क कोई पाताल में नहीं है, देवताएं कोई अलग नहीं है, असुर कोई अलग योनि के प्राणी नहीं है। हम सोचते हैं कि कोई बड़ी आंख वाले, दांत वाले, सिंग वाले, कोई भयानक अलग योनि के राक्षस, असुर, दानव, दैत्य है। नहीं, मनुष्य ही जब संपूर्ण निर्विकारी हैं और सर्व गुणों से संपन्न हैं तो उनको देवता कहा जाता है। जब हम अपनी पवित्रता और दिव्य गुण गंवाते हैं तो हम साधारण मनुष्य बन जाते हैं। जब विकार, अवगुण, बुराई, दूषण हमारे में आ जाते हैं तो हम ही असुर बन जाते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं, अहंकार दिखाते हैं, एक दो के प्रति वैर और द्वेष रखते हैं, उस समय कभी अपने चेहरे को आईने में देखा है? देखा है? उस समय हम कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? हम ही असुर जैसे दिखते हैं। ये तो अंदर की बुराइयों को चित्र में कैसे दिखाए? इसलिए भयानक चेहरे दिखाए हैं तो अंदर की वृत्तियां ना। तो ये रियलाइज करने की बात है कि हम ही असुर जैसे पतित बन गए। हमारी वृत्तियां ही दानवीय बन गई है, राक्षसी। इसलिए ये दुनिया नर्क बन गया है, घोर कलियुग रौरव नर्क कहा जाता है। इसलिए अब हमें अपनी वृत्तियों को बदलना है, कर्मों को सुधारना है, हमें ही देवता बनना है। हम ही देवता थे, भारत देव भूमि था, तब तो गाते हैं ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। उसमें आता है ना कि जहां हर बालक एक मोहन था, राधा एक एक बाला, यहां का हर बच्चा कृष्ण जैसा था, हर बालिका राधे जैसी थी। तो भारत ही स्वर्ग था, हम ही देवता थे। समय और प्रकृति के संसर्ग में आते आते हम पतित बन गए, संसार नरक बन गया, कलयुग हम इसे कहते हैं। इसलिए ऐसे नहीं है कि पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, पशु योनि में भटकना पड़ेगा। नरक में जाएंगे क्या, ऑलरेडी नरक में है, पशु योनि में क्या भटकेंगे, पशु से भी बदतर बन गए हैं ना। इसलिए स्व परिवर्तन की जरूरत है, खुद के प्रति फोकस होने की आवश्यकता है। हमारी नजर दूसरों के तरफ है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, नहीं, खुद को देखने की आवश्यकता है, स्व परिवर्तन की आवश्यकता। अपने को नहीं देखते हैं और भगवान से नाराज हो जाते हैं कि ऐसी कैसी दुनिया बनाई। लोग भगवान पर नाराज हो जाते हैं कि ऐसी दुख की दुनिया क्यों बनाई है। गाते हैं ना, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, हम उसको दोषित करते, उसने ऐसी दुनिया नहीं बनाई, उसने तो अच्छी ही बनाई थी, अपने जैसा ही हर इंसान बनाया था। समय और प्रकृति के संसर्ग में आकर आज वो ऐसी बन गई है। आपके बाप दादा के बाप दादा अपने जमाने में कोई मकान बनाते हैं और अब पीढ़ियों के बाद आपके समय वो मकान पुराना टूटा फूटा हो जाता है, तो आप ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमारे बाप दादा के बाप दादा ने ऐसा कैसा मकान बनाया। हाँ भाई, उसने तो अच्छा ही बनाया था, आपके समय वो टूटा फूटा हो गया। एक इंसान भी अपनी रचना अच्छी बनाना चाहता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने से अच्छा बनाना चाहता है, एक आर्टिस्ट अच्छे से अच्छा चित्र बनाना चाहता है, एक शिल्पकार अच्छे से अच्छी मूर्ति बनाना चाहता है, हर कलाकार अच्छे से अच्छी कला प्रदर्शन करना चाहते। तो परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ है वो ऐसी बेकार दुनिया थोड़ी बनाएगा, उनकी जो रचना होगी वो तो सर्वश्रेष्ठ होगी ना। तो उसने श्रेष्ठ दुनिया बनाई थी, सतयुग बनाया था, इंसान को देवता बनाया था, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। अब इस चक्र के चलते चलते कलयुग अंत में ये दुनिया ऐसी बन गई। अब फिर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो फिर दुनिया स्वर्ग हो जाएंगे। आज एक परिवार के अंदर लोग आपस में प्यार से रहते हैं, एक दो के शुभ चिंतक है, एक दो को सहयोग देते हैं, उस घर में आपस में प्रेम मधुरता सामंजस्य है, वो घर स्वर्ग जैसा बना है। किसके कारण? किसके कारण? हमारे कर्मों के कारण। वही एक परिवार जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, वैर द्वेष करते हैं, वो घर नरक जैसा हो गया। किसके कारण? हमारे कर्म के कारण। इसलिए कर्म की कलम से भाग्य की रेखा को जितना बनाना चाहो, जैसी बनाना चाहो, वो बना सकते। इसलिए कहा जाता है कि हम स्वयं ही भाग्य विधाता है, कोई न हमारा बिगाड़ सकता है न बना सकता है। कई सोचते हैं भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही दुख देते हैं। भगवान दुख नहीं देते। अगर वो दुख देता तो हम क्यों याद करते? वो तो हमें कर्म को श्रेष्ठ कैसे बनाना चाहिए वो ज्ञान सिखाता है, पाप कर्म को भस्म कैसे करना चाहिए वो विधि सिखाता है। लेकिन करना न करना वो तो हमारे हाथ की बात है। एक माली जमीन में बीज बोता है, धूप खाद पानी दे सकता है, लेकिन बीज से अंकुरित होना पनपना वो तो बीज का अपना कार्य है। तो परमात्मा भी कलियुग के अंत में आकर हमें कर्म का ज्ञान देते, कर्म को श्रेष्ठ कर्म कैसे बना सकते, किए हुए पाप कर्म जिसके कारण पतित संस्कार बने हैं वो भस्म कैसे कर सकते हैं, वो योग सिखाते हैं। अब उस ज्ञान और योग की शक्ति से पवित्र बनना, कर्म को श्रेष्ठ करना वो हमारा कर्तव्य है। और जब हमारा वर्तमान कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, जो किए हुए कर्म है उनका हिसाब तो चुकाना ही होता है, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है ना, जो हो चुका वो तो हो चुका, उसका हिसाब तो चुकाना ही होगा। लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है, अभी भी हम भगवान के श्रीमत पर चलकर हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो वो किए हुए कर्मों का हिसाब चुकाना भी सहज लगता है, क्योंकि अंदर से हमें उनकी याद की शक्ति मिलती, हमें कोई भय नहीं रहेगा। जब खुद के कर्म सही है तो मुझे कोई भय नहीं रहेगा कि कोई मेरे पर कुछ कर रहा है, कोई ग्रह की दशा आ रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम कमजोर हो गए, कर्म गलत हो गए, इसलिए प्रकृति प्रभाव डाल रही, बाकी हम प्रकृति के मालिक हैं। हमारे मन वचन कर्म का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, लेकिन हमारे कर्म गिर गए इसलिए परिस्थितियां प्रकृति हम पर हावी हो जाती। इसलिए जब वर्तमान जीवन मेरा सही हम कर लेते हैं तो फिर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, भविष्य श्रेष्ठ बनना ही है, क्योंकि मेरा वर्तमान श्रेष्ठ है, तो मुझे जहां तहां हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो भाई क्या है मेरे नसीब में। मेरे कर्म श्रेष्ठ है, अंडरस्टूड है, मेरा भविष्य श्रेष्ठ है ही, मुझे कोई चिंता और भय करने की जरूरत नहीं। तो अपने आप जीवन में भय चिंता सबसे मुक्त हो जाएंगे, भटकने से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ये अंगूठी पहनो, ये ग्रह शांत करो, ये विधि करो। नहीं, तो आज आप सभी को अपने अपने कर्म क्षेत्र में जाना है, तो जो कुछ तीन चार दिन में शिव बाबा का सत्य ज्ञान आपने सुना है, समझा है, उनको और अच्छी तरह जाकर के आपके शहर में जो भी केंद्र हो वहां संपर्क करें। इनका बेसिक 7 दिन का कोर्स है, वो रिवाइज कर लें ताकि और स्पष्टता हो जाए। कुछ ज्ञान की बेसिक किताबें भी आप ले जाएं ताकि आप अपने लॉजिक से स्टडी करें, तो आपको खुद को कन्विंस होगा कि ज्ञान कितना सत्य है। और नियमित उस पिता परमात्मा से हम अपना योग रखें ताकि उनकी याद से बुद्धि शुद्ध होती रहे, शक्तिशाली होती रहे और हम अपने कर्मों को सही बनाते चले। तो ज्ञान और योग अपने साथ लेकर जाना है, तो हम जहां भी रहेंगे वहां हम अपने आप को महान श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपने जीवन को हम आदर्श बना सकते हैं। तो यही आप सबके प्रति शुभकामना है कि आपका अपना जीवन ऐसा एग्जाम्पल बन जाए जो अनेक लोग जो मुंझे हुए हैं, भटक रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन मिल जाए। ओम शांति।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो।